अब आपको आवाज आ रही है?
जी मैं शुरू कर रहा हूं। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबिही नस्तईन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أقيلة بني هاشم، يا عالمة غير معلمة، زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم جميعا ورحمة. बहुत माजरत, कम्युनिकेशन नेटवर्क के ब्रेक होने की वजह से हमारी बातचीत रुक गई और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस वक्त देख और सुन रहे होंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबको विलादत बा सआदत सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आलम सबकी तौफीकात खैर में इजाफा करें और आपको इस जश्न अजीम की बरकतों और फ्यूजात के सदक़े में दुनिया व आखरत की अच्छाई और खूबी इनायत करें इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि इस वक्त की हमारी कम्युनिकेशन सही जा रही होगी। हम जो है एक खुदा की वलिया और अवलिया अल्लाह में से एक हस्ती की विलादत के जो है अय्याम में है और विलादत की रात है। मैं कुछ पॉइंट्स इस सिलसिले में तेज़ी के साथ अर्ज करूंगा और एक सबक जो कि इससे हम ले सकते हैं आज की इस दौर में। और आगाज में सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा की सब्र व इस्तक़ामत और उनके हौसले से सबक सीखने वाले हमारे उन भाई बहनों को दुरूद व सलाम भेजते हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन में गज़ाए इज़्ज़ा में, गज़ातुल इज़्ज़ा यानी गज़ा इज्जत वाले गज़े में इस वक्त जो सब्र व इस्तक़ामत का के कोह आहन बने हुए हैं और इसी तरह दीगर इलाकों में, इसी तरह जो है बॉर्डर जो लेबनान का है वहाँ पर हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जो खुदा के अवलिया अल्लाह हैं इनकी जो ज़िंदगी है और उनके जो फरामीन हैं वो हर वक्त हर घड़ी हमेशा हर लम्हा हमारे लिए मशअले राह है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इनकी विलादत हो या शहादत का वक्त आए तो हम इस तरफ तवज्जो दे दें, वो ठीक है हमारे लिए एक मौका है, फुर्सत है, लेकिन ये नहीं कि बस हम इंतज़ार करें कि विलादत आए तो फिर अपने औलिया का जिक्र हो, इनसे सबक सीने की बात करें। हमेशा ये हमारे लिए मशअले राह हैं और हमेशा इन्हें इनके साथ जो है इन्हीं की हयात तय्यब व ताहब और फरामीन के हिसाब से हमें अपने आप को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई ऐसा यानी तमहीदी जुमला या शायराना जुमला या ऐसे तकल्लुफाना जुमला नहीं है, ये एक रियल हकीकत है। लेकिन क्योंकि इतनी बार रिपीट हुआ है कि अब हमारे लिए ये एक तमहीद और एक आगाज, एक सरनामा और एक अदीबाना तकल्लुफाना जुमला लगने लग जाता है और इसके ऊपर फोकस करने के बजाय लोग इससे आगे की तरफ जहन को अपना डालते हैं। सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अवलिया अल्लाह में से हैं और वलीउल्लाह होने और अवलिया अल्लाह होने से क्या मुराद हम लेते हैं, आखिर ये क्या मकाम है जो कि हम सब के से लिए भी कहा गया है कि आपको अवलिया अल्लाह बनना चाहिए, असल आपका हदफ ये होना चाहिए। अगरचि हमारी हालात ऐसे हैं कि अगर हम नीचे, इससे नीचे भी, निचले तली तरीन जो है मरहलों में होते हैं तो भी हमारी बड़ी कामयाबी कहलाएगी, लेकिन अगरचि हमसे कहा गया है कि आपका जो हदफ है वो वली खुदा बनना है, यह जहन में रखना चाहे कि अवलिया अल्लाह, सादे अल्फाज में मैं कहना चाह रहा हूँ, अवलिया अल्लाह का जो मकाम है वो आबिदों और जाहिदों से ऊपर का मरहला है, ऊपर का मकाम है, ऊपर की मंजिलत है। और आबिद जाहिद को यूं समझा जा सकता है कि जो शख्स जो है खौफ मिनन्नार और शौक इलल जन्ना इबादत करता है उसे हम आबिदु जाहिद कह सकते हैं, यानी जहन्नम के डर से और जन्नत की उन खूबियों को देखकर उसे शौक इबादत पैदा हो जाता है, ज़ौक इबादत आ जाता है। ठीक है, ये शख्स भी आबिद भी है, जाहिद भी है, लेकिन ये उसका असल स्टेटस और असल मकाम व मंजिलत नहीं है, ना उसका है, ना वो जो इबादत कर रहा है वो क्वालिटी वाइज उस लेवल पे है। लेकिन जो शख्स यहाँ कुर्बे खुदा के लिए और है हुबुल्ला और इश्कुल्ला में इबादत करता है वो वलीउल्ला कहलाता है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब सानिया जारा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैह को औलिया अल्लाह में शुमार किया गया तो किस माने में है? मालूम होता है कि ये मुअज़्ज़मा बीबी अपनी सारी जिंदगी में जो भी इन्होंने इबादत की है, अपनी जिंदगी गुजारी है, वो हुबुल्ला और इश्कुल्ला और रिजाल्ला में थी, रजाए इलाही के लिए, इश्क खुदा में, मोहब्बत इलाही में। यहाँ पर हत्ता आबिदों और जाहिदों वाला जो एक स्टेटस होता है वो भी यहाँ नहीं है, वो जो कि शौक इलल जन्ना या खौफ मिनन नार है, जहन्नम के खौफ से या जन्नत के शौक में, वो नहीं है। ये क्या, कहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये मुअज्जमा बीबी इस मकाम मंजिलत पर, जो अवलिया अल्लाह का मकाम मंजिलत है, इस पर फायज हैं? ठीक है कि हमारे पास मासूम की गवाहियां मौजूद हैं, चौथे इमाम की गवाही मौजूद है और अइम्मा की गवाहियां मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा खुद इस बीबी के कुछ जुमले ऐसे हैं जो जुमले सिवाय अवलिया अल्लाह के किसी दूसरे से ज्यादा हम तवक्को नहीं रख सकते हैं। और मालूम होता है कि इस बीबी ने जितनी भी जहमतें उठाई हैं, जितनी खिदमात अंजाम दी हैं, जितनी तकलीफें उठाई हैं, वो सब और सब इश्क इलाही में अंजाम दिया है। इसीलिए देखें कि जब सबसे जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त आ गया और सबसे कठिन तरीन मरहला शुरू हो जाता है, तो उस मरहले को लेकर किस तरह ये बयान करती हैं कि ये मरहला मेरे लिए किस किस्म का मरहला है? बड़ा सख्त मुश्किल वाला मरहला था, बड़े तकलीफ दे था, बड़ी मुश्किलें से गुजर कर आ गए, बड़ी मुसीबतें सही हमने, बस क्या करें, हौसला किया हमने, सब्र और तहमुल किया, खुदा ने मदद की, बिलाखिर हम जन्नती हैं तो जन्नत पे तो जाना ही था, तो जन्नत की खातिर ये सब बर्दाश्त करना होता है, आतश जहन्नम से बचने के लिए ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ये तमाम जुमले अगर कह देती तो भी नूरानियत थी इसके अंदर, इबादत थी इसके अंदर, इसके अंदर जाहिदाना अंसुर पोशीदा था। लेकिन क्योंकि वलीउल्लाह हैं, औलिया अल्लाह में से हैं, बीबी ये नहीं फरमाती। बीबी ने फरमाया, मैंने सिवाय अच्छाई के कुछ नहीं देखा है, ये तकलीफें, ये मुश्किलात, ये कुर्बानियां, ये मुसीबतें, ये सब कुछ जो है वो इश्कुल्ला में है, हुबुल्ला में है। लिहाजा जब ये इश्कुल्ला और हुबुल्ला में है तो एक वली के लिए, एक वलिया के लिए ये खूबसूरत है, इनमें अच्छाई है, इनमें चाशनी है, इनमें कशिश है, इनमें शौक है, इनमें जज्बा है, और वो जज्बा जज्बा इलाही है। तो लिहाजा फरमाया, देखे मैंने खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इसी तरह के जुमले हमें और जो अवलिया अल्लाहिल मासूमून फी आयत तत्हीर में सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की जबानी भी नकल हुआ है, जिसमें कभी सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आओ तलवारों मुझ पर टूट पड़ो, आखिरी लम्हात में फरमाते हैं रिजन बे कजाइक, खुदाया मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, जो तू चाहता है मेरे माबूद उसके सामने सर तस्लीम खम हूँ। ये जो तस्लीम महज है, ये जो रजाए महज है, महबूब और बल्कि मैं कहूंगा मुहिब की रजा पे राजी रहने का अंसुर है, उसकी पसंद को अपनी पसंद बनाना, उसकी मर्जी को अपनी मर्जी बनाना, उसकी खुशी को अपनी खुशी बनाना, उसकी जो है हर चीज को अपना लेना, ये वो मकाम है जो औलिया अल्लाह का मकाम है। लिहाजा जो है सानिया जारा ज़ैनब कुबरा जो है औलिया अल्लाह में से हैं। अब सानिया जारा की हयात तय्यबा से जो सबक हमें मिलते हैं, इस पर एक मुख्तसर गुफ्तगू और फिर आपकी जहमत तमाम करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम में हैं और मैं इस प्रोग्राम के किचन से लाइव हूँ आपके साथ। जाहिर है कि यहाँ पे साथ में किचन में जो जिम्मेदार हमारी माएँ बहनें हैं वो अपनी ड्यूटी भी निभा रही हैं। यजीदियत के दरबार में एक जजाकल्ला वाकया पेश आया, जिसमें हुआ ये था कि यजीद ने कुरानी आयात का गलत इस्तेमाल किया, जैसे कि बनी उमैया अहादीस और कुरानी आयात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते थे। मसलन जनाब अमार यासिर की जब शहादत हुई जंग सफीन में, तो हुजूर पाक की हदीस थी अमार यासिर को लेकर कि अमार यासिर को कत्ल करने वाले गुरोह जो है वो इस्लाम से बाहर हैं, वो सही लोग नहीं हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुई, तो उसको भी उन्होंने एक तरीके से इंटरप्रिटेट किया और धोखा देने की कोशिश की, और बेवकूफ़ लोग थे, इतने ज्यादा समझदार नहीं थे, मोटी अकल के लोग थे, वो जो कहते हैं ना उर्दू में अकल बड़ी है भैंस, तो उनके लिए भैंस बड़ी लगती थी। बहरहाल इस तरह के मसाइल थे, से रिलेटेड लोग थे जिनको ऊंट और ऊंटनी की तमीज नहीं थी। अब इसके पीछे वाकयात हैं, तो जिसमें ऊंट और ऊंटनी का किस्सा है कि वो ऊंट और ऊंटनी में तमीज नहीं कर पाने वाले लोग थे, तो उन हदीस को जब गलत इंटरप्रिटेट किया तो फौरन वो मान गए उस चीज को जो बनी उमैया ने इंटरप्रिटेट किया। इसी तरह जो है यजीद ने इसी लोगों की ला इल्मी, बेवकूफी, कम शुऊरी, दीन से नावाकिफियत का गलत फायदा उठाते हुए कुरान मजीद की एक आयत पढ़कर जो कुछ वाकई करबला हुआ है उसकी एक शरई और कुरानी इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की, और लोगों को भी मैसेज दिया कि देखो जो कुछ हुआ है उसमें खुदा की मर्जी शामिल थी। खुदा, क्योंकि कुरान में कहता है आले इमरान की आयत नंबर 26 में, यजीद ने जो आयत पढ़ी वो ये थी कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुतियल मुल्का मन तशाउ व तनजुल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कह दीजिए कि ए अल्लाह, ए ममलिकत और हस्ती के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत देता है, जिसे चाहे हुकूमत छीन लेता है, और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है, भलाई तेरी ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। ये वो आयत थी जिसको पढ़कर अपनी इस घनाओं ने और रोए जमीन के सबसे बदतरीन अमल की एक शरी इंटरप्रिटेशन और शरी एक तोजी करने की कोशिश की। यानी ये कह रहा चाहता कि देखो अगर बनी उमैया को बादशाहत और इख्तदार मिला है, ताकत मिला है, उनके पास खजाने हाथ में आ गए हैं, तो ये खुदा ने दिया है। अगर ये करबला का वाकया हुआ है, तुम लोग कैदी बन गए हो, तो ये भी खुदा की वजह से, नऊज़ु बिल्लाह, खुदा की वजह से हुआ है। ये एक खतरनाक किस्म की एक ऐसी रीजन देना है अपने जराइम के बारे में बेवकूफ लोगों के दरमियान। यहां पर जो है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा यहाँ पर जरूरी समझती हैं, जाहिर है कि जवाब दिया जाए और इसकी जो गलत तरीके से एक अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, इसको बरमला किया जाए। हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा की अल्लाह जो जवाब है उसमें फरमाती है, अल्लाह की मशीयत में ये ज़हन में रखो कि अंधी बांट नहीं होती, बंदरबांट नहीं है खुदा के यहाँ। कुछ लोगों को हुकूमत दे और कुछ लोगों को जलील करे, ये कोई बंदर बांट नहीं है। और जिसको हुकूमत मिलती है और जिसको इक्तदार मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई वो कोई बढ़ाई रखता है या बुजुर्गी रखता था, इस बेस पर खुदा ने दिया है। वो कुछ लोगों को हुकूमत अजरो ये एहसान देता है और कुछ लोगों को जो हुकूमत देता है वो इंतकाम की वजह से देता है, ताकि वो और जरायम के इरतकाब करें ताकत के हुसूल के बाद, और उनके गुनाहों की जो लेवल है वो इतनी बढ़ जाए कि खुदा की रहमत से बाहर हो जाए। मसलन सूरह रूम की आयत नंबर 10 को इस यजीद के तिलावत की भी उस आयत के मुकाबले में सानिया जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, फरमाया थुम्मा कान आकिबत अल्लदीन असा उसूआ इन कद्दबू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। फिर जिन्होंने बुरा किया उनका अंजाम भी बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठलाया था और वो उनके मजाक उड़ाते थे, कह रहे थे यजीद तुम जो कर रहे हो ना वो बुरा काम है, तुम खुदा की निशानियों को जुठला रहे हो और उसका मजाक उड़ा रहे हो। उसके बाद खुतबा के कुछ जुमले इरशाद फरमाए और फिर अगली आयत तिलावत की, जिसमें खुतबे के अंदर फरमाया कि तुम ये ख्याल करते हो यजीद कि क्योंकि अब जाहिरी तौर पर इख्तदार तुम्हारे पास आया है, तो जमीन व आसमान पर कब्जा तुम्हारा हो चुका है और तुम अब जमीन व आसमान हम पर तंग करोगे और हमें कैदियों की तरह शहर शहर घुमा रहे हो, तो इसका मतलब तुम ये ले रहे हो कि खुदा के नजदीक हमारी बेइज्जती हो गई है नऊज़ु बिल्लाह, और क्या कहते हैं तुम बड़े इक्तदार और इज्जतदार हो गए हो, तो लिहाजा तुम्हारा जो अब ये जो तुम्हारा गुरूर और तकब्बुर है जिस पे तुम इतरा रहे हो कि तुम्हारी दुनिया आबाद हो गई और हम बर्बाद हो गई है हो गए हैं, तुम अगर ये कंसेप्ट रखते हो तो फिर कुरान मजीद की आल इमरान की आयत नंबर 178 की तिलावत करती हैं, जो बहुत ही अहम आयत है जिसके अंदर बड़े अहम मैसेजेस हैं आज तक हमारे लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए, कयामत तक ये बहुत जरूरी हैं। हम सबको इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। इसके मल्टीपल पहलू हैं जिनमें से कुछ डायरेक्टली हमसे रिलेट होते हैं, हमारी हर जनरेशन से रिलेट होते हैं। वो आयत ये है, फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीन कफरू انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مبين. और काफर लोग ये गुमान ना करें, यहाँ काफर से मुराद वो काफर नहीं है जो कलिमा नहीं पढ़कर होता है, यहाँ काफर से मुराद ये जुटलाने वाला, क्योंकि सामने यजीद बैठा हुआ है, इसलिए जुटलाने वाला यानी हकीकत का इनकार करने वाला, खुदा के कवानीन को न मानने वाला, क्योंकि कुफर के मानी ये भी हैं, कुफर के मानी उस मीनिंग्स में भी हैं जो फिक के अंदर डिफिनेशन जिसकी दी जाती है। फरमाया कुफर काफिर लोग ये गुमान ना करें कि हम उन्हें जो डील दे रहे हैं तो उनके लिए ये डील बड़ी बेहतर होगी, हम तो उन्हें सिर्फ इसलिए डील दे रहे हैं ताकि ये लोग अपने गुनाहों में और इजाफा कर लें और आखिरकार उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। अब यहाँ फरमा रही है कि देखें, अगर तुम्हें थोड़ी सी डील मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई अच्छे आदमी हो, तुमने अच्छा काम किया इसलिए खुदा ने तुम पर नियमतें नाजिल की हैं, नहीं ये नहीं है, ये नियामत नहीं है बल्कि नकमत है, ये तुम्हारे ऊपर क्या है, एक अजाब की तरह है, यानी अजाब इस लेवल का होने जा रहा है कि जहां सल्ब तौफीक होगी, ने सल्ब तौफीक वो सुमन बुकुम से आगे की एक स्टेज है जो सल्ब तौफीक कहलाती है। यहाँ कुछ सवाल उठ सकते हैं लोगों के जहन में, हमारी नई जनरेशन के जहन में भी, उनमें से एक सवाल ये हो सकता है कि जो लोग हक पर नहीं है आज भी, जो लोग बातिल पर हैं, आप देखते हैं फिलिस्तीन के अंदर इस वक्त गजा वालों, गजा के जो नहते लेकिन साबित कदम बच्चों, औरतों और ख्वातीन के मुकाबले में जो लोग खड़े हैं, वो तो बड़े ताकतवर हैं, वो बड़े ऐश नोश में हैं, वो माल दौलत से माला माल हैं, और जो जालिम है, जिनके हाथ उठते हैं वो बड़े लंबे हाथ होते हैं, वो आसानी से दूसरों की जान माल को गसब कर लेते हैं और उनकी जो दुनिया है वो फलती फूलती नजर आती है। ये जो है आखिर इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, एक मतमली क्या है, ये आयत उसको बयान करती है, कह रही है कि ये डील एक दरअसल में जो तुम्हें थोड़ी सी छूट दी जा रही है किसी जालिम को और काफर को, तो ये असल में एक इम्तिहान है कि काफर अपना जो जालिम है वो अपना बार गुनाह में इजाफा कर रहा होता है, उसके गुनाहों का जो खाता है वो मजीद बढ़ रहा होता है, इसलिए डील खुदा इसलिए बाज़ औक़ात डील देता है खुदा एक स्टेज तक की शायद लौट आए, झटके भी देता है बीच बीच में कि ये शायद बेदार हो जाए, होशियार हो जाए, लेकिन नहीं होते हैं तो खुदा कहता फिर इनको इतनी डील दे दो कि ये अपने लिए बिल्कुल हर रास्ते को बंद कर दें और मेरी रहमत का, क्योंकि रहमत वसी है, रहमत वसअत रखती है, आप दुआए कुमेल के अंदर पढ़ते हैं, तो ये वसअत खत्म हो जाए, लिमिटेशन आ जाए, ये अपने लिए तौफीक तक यानी इनके हाथ से चली जाए, लिहाजा काफर जालिम इस्तेकबार माल दुनिया की फरावानी और वसाइल के जरिए हक के राह पर सआदत अबदी हासिल नहीं कर सकते, दुनियावी अय्याशी कर सकते हैं, दुनियावी सहूलतें ले सकते हैं लेकिन सआदत अबदी नहीं मिलेगी। मसलन कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है, उसके हक को छीन लेता है, माल को छीन लेता है, तो मुमकिन है दुनिया में वो थोड़ी सी जो जिंदगी है वो जरा मजे में गुजार ले, वो दुनियावी एतबार से, लेकिन सआदत अबदी इससे हासिल नहीं होती। किसी ने नाहक इकतदार पर कब्जा कर लिया, ताकत पा लिया है, वो सआदत अबदी नहीं मिलेगी उसको, बल्कि उल्टा उसका जो जुराइम है और गुनाह है उसमें वो इजाफा हो रहा होता है। नियमत खुदा की जो नियमत जो है दर हकीकत इस जालिम के लिए और इस गासिब के लिए खुदा की एक फौज की तरह होती है और एक खुदा के एक फौज की तरह काम कर रही होती है, लिहाजा जितनी ये फौज ज्यादा होगी, यानी दूसरे अल्फाज में जितनी ये नियामत ज्यादा होगी, जितना ज्यादा उसका इकतदार बढ़ेगा, जितना लंबा होगा, जितना ज्यादा वो लूट मार करेगा, उतना ही ज्यादा उसको हिसाब और किताब देना होगा और इतना ही ज्यादा वो अजाब में होगा। ये आपने मिसालें सुनी होंगी मौलाए कायनात और कुछ लोगों की, हुजूर पाक ने कुछ पैसे दिए और उनको कहा जी कि आप जाएं वहां पर, ये किसी गरीब को दे के आए, मौला ने कहा मैं बाहर गया था, कोई मिल गया, मैंने सीधे पकड़ा दिया, बात खत्म, तवे से नीचे उतर गए, मिसाल है समझाने के लिए। दूसरे शख्स ने कहा मैं घर गया था, मैंने आटा खरीदा, फिर रोटी पकाई और रोटी लेकर गया, फिर मैंने तो इतने देर तक वो आधे पैर तक जल चुका था तवे के ऊपर, यानी इस तरह ये हिसाब और अजाब किताब में इजाफा है दर हकीकत, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हिसाब किताब देनी होगी। दुनिया एतबार से तो लोग कहते हैं फलां बिलियनर हो गया, ट्रिलियनर हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से वो बिलियन ट्रिलियन का हिसाब भी तो है, जिसके पास हजारों हैं या लाखों है, वो इतना ही हिसाब दे देगा, जाहिर है बिलियंस और ट्रिलियंस के हिसाब तो वो नहीं देगा। माल और इकतदार खुदा की पकड़ है, इसीलिए कहा है कि उनके लिए जो जालिम है, जो जाबिर है, ये नियामत नहीं है, बल्कि उनके लिए क्या है, निकमत है, अजाब है, ये बरकत नहीं है, बल्कि वो ये मोहलत है। बाज लोग समझते हैं ज्यादा पैसे आ गए में बरकत आ गई, नहीं, मोहलत आ गई है। हो सकता है अगर जालिमाना तरीके से कमा रहे हो तो ये बरकत नहीं, ये मोहलत है। वही मोहलत जो सानिया जारा यजीद के बारे में कह रही है कि तुम्हें ढील दे रहा है खुदा, मोहलत दे रहा है तुम्हें, ये मोहलत भी मौका देना नहीं है, ये मोहलत ये इसलिए है कि तुम गुनाहों में इजाफा करते जाओ, टोटली रहमत से आउट हो जाओ, टोटली तौफीक खत्म हो जाए तुम्हारे लिए, ताकि खुदा की जो वसी रहमत है उससे बाहर निकल जाए, तौफीक भी खत्म हो जाए। लिहाजा मजकूरा जो हमने आयात जो जिक्र किया, जिसका जो मजकूर की, उन आयात के अंदर आप देखते हैं कि इसी सुन्नत खुदावंदी यानी मोहलत और ताखीर को बयान किया, जो कि सुन्नत इलाही का एक फार्मूला है। ये मोहलत और ताखीर मुमकिन है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो ताकि यज़दादू इस्मन वलहुम अदाबुन मुहीन, वो और अपने गुनाहों में बढ़ावा करें, यज़दाद करें, ज्यादा कर लें और अजाब मुहीन की तरफ जो है वो उसके हकदार बन जाएं। एक और मैसेज जो इन आयात के अंदर से मिलता है और आज भी जिसकी जरूरत है हमारे लिए, वो ये है कि कुछ लोग कुरान की आयात के जाहिर को लेकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा होशियारी की बहुत जरूरत है। बाज अपने गलत अकायद, गलत सोच, गलत आइडियोलॉजीज, गलत किस्म की बातों को प्रोटेक्शन देने के लिए या उसको बेस्तला साबित करने के लिए आयात को लेते हैं और उसकी गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन की जाती है, क्योंकि आम लोग कुरान और हदीस की फहम और समझ से जरा दूरी हो रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो लोग थोड़े बहुत इन चीजों को समझते हैं और एट द सेम टाइम दुनिया परस्त हैं, चालाक और मक्कार हैं, वो उनके धोखे में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी आयत को पढ़ने जा रहा हूँ जो बहुत हाई लेवल पर मिसयूज होती रही है और शायद होती भी है। उनमें है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी जो कहते ना भाई खुदा ने इतना ही बोझ डाला है लोगों पर जितनी उसकी कैपेसिटी और ताकत है, और इस आयत का कितना गलत इस्तेमाल हुआ है। अब मैं यहाँ खुल के नहीं बोल सकता कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे इनका गलत इस्तेमाल किया है, गया है। कहते जी हमारी तो ताकत ही नहीं है जी कि हम कुछ ऐसा काम करें, हम पर तो अगर गजब वाले ये कहें जी हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, हम तो वैसे भी 17-18 साल से मुहासरे में हैं, पिछले तकरीबन 17 सालों से ज्यादा हम अजाब में मुबतला हैं और काबिज फौजों के दरमियान है, अब हमने क्या यहाँ पर मुकाबले करने हैं, तो रेजिस्टेंस करना है, तो मुबारजा करना है, तो जिदोजहद करनी है, तो आजादी के पीछे भागना है। तो अगर इस आयत का सहारा लेकर वो ये करेंगे तो अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा? शुक्रिया, अल्टीमेट नतीजा यही निकलेगा कि फिर जिदोजहद नहीं करेंगे। हिस्टोरिकली आप देखें, मैं बस इशारे में बात कर सकता हूँ, जब इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैहि नजफ अशरफ पहुंचे थे जलावतनी की शक्ल में, वहां बहुत बड़े जिम्मेदारों के डेलीगेशन के दरमियान बातचीत हो रही थी, तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर जब कहा जी कि हम कैसे इस ताकतवर पूरे रीजन के अंदर जो एक पोलिसमैन बना हुआ है आलमी ताकतों का, जिसकी पुश पर आलमी ताकतें सारी खड़ी हैं, इसको हम जो है ऐसे डील नहीं दे सकते, हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो बहुत बातें कैसे हटेगा, ये तो बहुत बड़ा ताकतवर है वगैरह वगैरह, और कहा कि नहीं ये लोग साथ देंगे, हमें जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो उस वक्त आप यकीन करें इसी आयत को पढ़ा गया, और पढ़ने वाले भी कोई अवाम में से नहीं थे, सुनने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो इस आयत के मुकाबले में फिर उस वक्त इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने दूसरी आयत पढ़ी कुरान की, व मन इस्तताअतु मिन कुव्व व रबातिल खैल, कहा ये भी तो अल्लाह फरमाता है ना कि अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल नहीं हो, तो ये एहलियत पैदा करो ना, ये लियाकत और एहलियत पैदा करने का हुक्म भी तो खुदा, कमजोर बन के रहने का हुक्म तो नहीं दिया खुदा ने। ये तो आयत उस वक्त इस्तेमाल होगी कि इंसान से ये कहा जाए एक पांव उठाओ और दूसरा भी उठाओ, तो वो कह सकता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, बाबा इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता बाई नेचर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई हमारी दस्तरस से बाहर है, यानी लेकिन बगैर जिद्दोजहद के, बगैर तलाश और कोशिश के, बगैर मेहनत के, बगैर किसी अपनी सलाहियतों में इजाफे के आप पहले ही दिन से ये कहकर हथियार फेंक दें, ये कोई तरीका नहीं है। लिहाजा ये होशियार रहने की जरूरत है कि कैसे कुरान मजीद की आयात और अहादीस की इंटरप्रिटेशन की जाती है। बनी उमैया यही काम करते रहे हैं सारी जिंदगी, इसी तरह धोखे देते रहे हैं, हदीसों का गलत तर्जुमा, गलत तरीके से उसको अप्लाई करना चीजों के ऊपर। लिहाजा लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बेबी की विलादत के दिन जो लोग दीन की हकीकत को समझकर दीनदार बने हैं, उन पर फर्ज है कि ऐसे वक्तों में जब दीन के नाम पर दीन के खिलाफ इकदाम हो जाए तो फौरन क्या करें, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है रहबर ने, जहाद तबयीन करें। वो जिद्दोजहद जो बयान और वजाहत की जिद्दोजहद है, जो उस मसले के अंदर से जो गुबार ने जिस गिर्दो गुबार की वजह से वो सच्चाई छुप रही है, बनावट उसके ऊपर आ रही है, उसकी गिर्दो गुबार को हटा के उस मसले को बयान करके वजाहत के साथ शफाफियत के साथ दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। लिहाजा ये हमेशा जहन में रखना चाहिए, कुरान मजीद की अहले बैत की रविश तफसीर ये रही है मिन जुमला, कि कुरान मजीद की आयात को समझने के लिए दूसरी कुरान मजीद की आयात से सहारा लिया गया है। रविश कुरान कहते हैं तफसीर बे तफसीर, यानी कुरान बे कुरान, यानी आयत से आयत को तफसीर करने के लिए। और पॉइंट आखिरी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस सुनहरे दौर में अभी भी अगर ये हक के पैगाम, ये हक के मैसेज दबे रहे, अब भी अगर दुनिया में मजलूम को जालिम बनाया जाए, मजलूम को दहशतगर्द बना के पेश किया जाए, और जालिम को उसमें सिविलाइज चेहरा, डेमोक्रेटिक पता नहीं क्या क्या चीजें बनाकर पेश कर दिया जाए, खुले दिन दहाड़े खुले आम हजारों लाखों आंखों कैमरों और वसाइल टूल्स के सामने जो है बेगुनाहों को तहे तहक कर दें, मासूम बच्चों पर बमबारी करें, अस्पतालों तक घुस जाएं, और उसके बाद वो अपना चेहरा सिविलाइज दिखाएं, और दूसरी तरफ उन लोगों को पता नहीं क्या क्या नाम और दहशतगर्द और इस तरह बनाएं, ये जो है बहुत बड़ी गलती होगी। ये कार ज़ैनबी नहीं कहलाएगा। सानिया जहरा ने आप देखें उस रेगिस्तान करबला में जहां आबादी से दूर भी था, वहां पर जो इतनी बड़ी कुर्बानी थी उसके ऊपर गिर्दो गुबार आने नहीं दिया, किसी को ये मजाल नहीं दी कि कोई उसकी गलत तफसीर करता, कोई गलत इंटरप्रिटेशन करता, कोई गलत तरीके से पेश करता। यजीद ने कोशिश की आयात के जरिए से, बनी उमैया ने कोशिश की आयात के जरिए से, लेकिन सानिया जहरा ने आयत के मुकाबले में आयत से जवाब दिया, दलील के मुकाबले में दलील से जवाब दिया, तबलीग की जहमतें उठाई, सोबतें की, जिसको आज हम और आप कहते हैं एनर्जी, एनर्जी लगाया, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट किया, अपने माल को इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, बात किया, एम ने भी किया। हमें जो पैगाम मिलता है आज दीन की सच्चाई के लिए, हकानियत के लिए, कोशिश करें कि इन सच्चाइयों के ऊपर गिर्दो गुबार ना, आपके सामने है गजा में जो कुछ हो रहा है, देखें आप किस तरह गजा को पेश किया जा रहा है, ये तो हम और आपकी आंखों के सामने है ना, ये कोई ढकी छुपी चीज तो नहीं है ना, ये तो हम खुद देख रहे हैं ना, ऐनुल यकीन कम से कम पे हम मौजूद है ना, उसके बावजूद आप देखते हैं किस तरह इसको पेश किया जा रहा है हमारे, और कितने लोग हैं जो इसकी लपेट में आते हैं, कितने लोग हैं इसको लेकर ब्लेम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्लॉक के तमाम मेंबर्स को और उनके लीडर्स और क्यादत को किस तरह वो कर रहे हैं, देखो कहाँ है वो लोग, क्यों नहीं आ रहे हैं, चीजों को किस तरह जो है ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है, ये कार ज़ैनबी है आज के दौर में। और सानिया ज़हरा का यही पैगाम है, परवरदिगार आलम से दस बदुआ होते हैं कि इस वलिया खुदा की, इस वलिया और औलिया अल्लाह में से ये आलिम गैर मुअल्लिमा, ये शरीकतुल हुसैन बीबी के तुफेल और सदक़े में जो कार ज़ैनबी इस बीबी ने अंजाम दिया, जो तबयीन व बयान व वजाहत व क्लियरिटी का कि जद्दोजहद इस बीवी ने अपनी सारी जिंदगी की उन सोबतों और मुश्किलात और उन टॉर्चर्स और उन तब वहशतनाक जो है मरहलों से गुजर कर परवरदिगार आलम इस बीवी के रास्ते पर चलते हुए हम तमाम मर्द और जन को इस बीवी के नक्श कदम पर चलते हुए जब तक जिंदा हैं इस बीवी के मिशन को जिंदा रखने और इसी काम को जारी व सारी रखने की तौफीक इनायत करें। परवरदिगार आलम मजलूमों की नुसरत अता करें, मजलूमों के असलहे में मजीद चुस्ती और रोब और दबदबा ईजाद करें, जालिम के असलहे में सुस्ती, कुंदी और नाकामी इनायत करें, मजलूमों को मजीद हिम्मत अता करें, जो हामियान मजलूमीन हैं उन्हें हिम्मत अता करें, जो आवान उस जलमा हैं जालिमीन के मददगार हैं खुदा उनको भी जो है نیست و نابود کرے اور ناکام و نامراد کرے انشاءاللہ. آپ سب کو ایک بار پھر ثانیہ زہرا زینب کبرا شریکت الحسین زینب بنت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کی ولادت باسعادات بہت بہت مبارک ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.